हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक बार हृदय से पुकारो, हरे कृष्णा प्रेम से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओम बोलो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। तो आज के इस 3 फरवरी के इतवार के दिन 2019 के दिन हम सब अंजन वन में बैठे हुए हैं, अपने हाथों को अपनी जेब में डालकर, क्योंकि बहुत गहरी धुंध फैली हुई है। सब कुछ जेब में डाल दो, खाली आत्मा को खुला रखो बस। जब आत्मा खुली रहेगी तो इनपुट होता रहेगा। हरे कृष्णा। तो ये अंजन बिहारी वन है, अंजन वन, जिसमें राधा अंजन बिहारी निवास करते हैं, और वैसा नाम उसका है आंजनोक। ये विशाखा सखी का गांव है। हाँ, वो ऐसे कहते हैं, लेकिन जो भी है, राधा रानी का जन्म कब हुआ था? मतलब आपका जन्म आपके जन्मदिन के ऊपर हुआ था, ऐसे कहने का मतलब है ना? आपका जन्म कब हुआ? आपके जन्मदिन पे। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है, और विशाखा देवी का जन्म भी उसी दिन हुआ है। ये विशेष बात है। और एक सखी है जिसका जन्म इसी दिन हुआ है, वो कौन है? वो चंपकलता देवी है। तो राधा रानी, चंपकलता और विशाखा, इनका जन्म एक ही दिन पे हुआ है, भाद्रपद शुक्लाष्टमी। जब हमारी वो गणपति के बीच में होती ना, क्या दुर्गाष्टमी, क्या होता है वो, गौरी पूजन, उस दिन विसर्जन भी होता है गौरी का, उसी दिन राधा रानी का जन्म होता है। जो तार होते ना आकाश में, तारे, रंग कैसा होता है उनका बताइए? आकाश के तारों का रंग अगर बच्चा आपको पूछता है तो क्या बताएंगे? सफेद चमकता हुआ, तो उसको तारावली कहते हैं, तारावली। तो तारावली का जो रंग होता है ना, उस प्रकार के वस्त्र ये पहनती हैं। डैजलिंग लाइक स्टार्स, शाइनिंग लाइक स्टार्स, तारों की तरह चमकता हुआ वस्त्र पहनती हैं। हर एक सखी का अपना अपना एक कुंज है। जैसे ललिता देवी का कुंज का नाम क्या है? स्वानंद सुखदा कुंज। क्या नाम है? स्वानंद सुखदा कुंज, ये ललिता देवी के निजी कुंज का नाम है। उनका घर और उनका गांव अलग है, उनका एक निजी कुंज है, उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। वैसे विशाखा देवी का कुंज का नाम है वसुधा कुंज। क्या नाम है? हर एक सखी का अपना एक प्रिय वाद्य है। राधा रानी का प्रिय वाद्य कौन सा है? बांसुरी। इट्स लाइक अ शूटिंग इन द एयर, लग गया तो लग गया। राधा रानी का प्रिय वाद्य वीणा है, और बाय द वे विशाखा देवी का भी प्रिय वाद्य वीणा है। और कौन बजाता है वीणा? सरस्वती देवी। हर एक सखी का एक राग प्रिय है, गाने वाला राग। राधा रानी का राग कौन सा प्रिय है? राधा रानी का राग बताता हूं आपको मैं, और विशाखा देवी का राग जो है वो सारंग है। सारंग, और सारंग राग के कई प्रकार के होते हैं, मधुमात सारंग, शुद्ध सारंग, मिश्र सारंग, उस प्रकार से। हर एक गोपी की अपनी एक विशेष सेवा होती है, वो सब सेवाएं कर सकते हैं, गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई किसी की खासियत होती है, तो उसमें विशाखा देवी की जो विशेषता है वो राधा और कृष्ण को श्रृंगार करने की है। राधा और कृष्ण को विशेष रूप से श्रृंगार करती है वो। और उनका और एक विशेषता है कि सुगंधित द्रव्य होते हैं ना अत्तर, इसको निर्माण करने में और समय के अनुसार उसको लगाने में वो बहुत कुशल है। उसको पता है बिल्कुल कौन से मौसम में कौन सा इत्र लगाना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो गुलाब, हाँ, मोगरा, इस प्रकार के अत्तर लगाने, और सर्दी के मौसम में केसर और कई प्रकार के होते हैं। चंदन भी ठंडक में लगाते हैं, ठंडक करने के लिए, केसर उष्णता प्रदान करता है। तो युगल जोड़ी के दिव्य शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का विचार पूर्वक सेवा करने का जो कुशलता है वो विशाखा देवी का है। और एक उनकी विशेषता है कि वो हमेशा नए नए तरीके ढूंढती है राधा कृष्ण को मिलाने के लिए। और राधा कृष्ण की सेवा का आयोजन कौन करता है? वृंदा देवी। तो उसका चिंतन जो है वो विशाखा देवी करती रहती है नए नए तरीकों का, और राधा और कृष्ण का मिलन आयोजित कर उसका विचार करती है, और रस के माध्यम से राधा और कृष्ण का आनंद कैसे बढ़ाया जाए इसके विषय में बहुत कुशल है वो, नए नए तरीके ढूंढ के निकालने। साथ में राधा और कृष्ण के जो वस्त्र है ना, जिसे आप लोग डीटी वर्शिप में रूम में रखते, संभाल के उसको हैंगर पे रखते हैं, अलग अलग एक एक वस्त्र को सेट को रखते हैं, फिर उसके अलंकार को सेट में रखते हैं, तो पूरे पूरा इंतजाम होता है ना, अपने हॉस्पिटल में भी है ना वो, उस प्रकार का जो डीटी वर्शिप के अंदर जो वस्त्रों का अलंकारों का जो मेंटेनेंस है वो सब विशाखा देवी के नेतृत्व में होता है, उसमें बहुत कुशल है वो। और एक विशेष बात है उनकी, वृंदा देवी की सहायता से वो वृंदावन के जितने भी वन हैं, उस सारे वनों में जितने पौधे हैं, बेलियां हैं, पेड़ हैं, उन सब की देखभाल करती है वो। क्यों करती है देखभाल उनकी, बताइए? ये वृंदावन के पेड़ों की और बेलियों की और इसकी देखभाल करने की क्या आवश्यकता है? अरे वो कृष्ण की लीला के सहायक हैं, प्लेटफॉर्म है वो। अभी देखो वहां पर बाहर स्टेज बन रहे हैं, डांस किधर होगा? वो स्टेज पर होगा ना, उसका प्लेटफॉर्म है, पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि के ऊपर ही सब कुछ होता है। उस तरह से ये जो वन जो है ये राधा कृष्ण के सेवा का, लीलाओं का पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर ही सौंदर्य बढ़ता है, उसके आधार पर रस का विकास होता है, उसके आधार पर आनंद की निर्मिति होती है, उसके आधार पर लीलाएं उद्दीपित होती हैं। तो ये सब कुछ मेंटेन करना जरूरी है। अभी आपको साल में एक बार ड्रामा करना है समझो, तो कुछ लोग कुछ परमानेंट ड्रेस लेकर रखते हैं, परमानेंट अलंकार लेकर रखते हैं, बार बार हर बार रेंट करने की जरूरत क्या है? तो उसको बड़े संभाल के लंबे बॉक्स में इसे फैला के स्टैक करके कबर्ड में रखते हैं, लिखते हैं उसके ऊपर ये घंटा हार है, ये गले का हार है, ये चोकर है, ये कलाई बंद है, ये बाजू बंद है, उसको उसको संभाल के रखते हैं और अगले साल उसको यूज करते हैं। वैसे हर एक वन में, मैंने कहा ना वृंदा देवी का स्टोर हाउस है, तो उस स्टोर हाउस में भी बड़े इत्मीनान से ये योजनाबद्ध रीति से इनको सब सजाया जाता है, ताकि समय पर जब लीला होने का समय आ गया तो उसको उपयोग में ला सकते ना। नहीं तो वो किधर गया, वो चोकर रखा था, वो कहा था लाल बक्स में रखा था, किधर गया, यहीं रखा था, वो सब नहीं होता है। उसकी योजना होती है पूरी तरह से, हमारे कैंप की भी ऐसी योजना होती है, हर चीज़ की एक लिस्ट बना के रखी है, कहाँ कहाँ क्या जाएगा, ओपीडी में क्या जाएगा, आईपीडी में क्या जाएगा, ऊटी में क्या जाएगा। उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को अति उत्कृष्ट तरीके से संपन्न करने के लिए बहुत विचार और योजना की आवश्यकता होती है। सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ है ना, कि सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, तो सब लोगों को देखना यह है कि सेवा में क्या कहते हैं ना उसको, सूक्ष्म दृष्टि से परिपूर्णता होनी चाहिए, माइक्रो डिटेल्स। अरे चल जाता है ना, अभी क्या है, अभी इतना तो गोपीडाट लगा देना, अभी यहाँ पर नहीं लगा तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। वो लास्ट डॉट भी लगेगा जहाँ पर लगना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, जो भी होना है वो परफेक्ट होना है। उसको 90% एक्सेप्ट नहीं करना है, 95% भी एक्सेप्ट नहीं करना है, 99% भी एक्सेप्ट नहीं करना है, 100% ही एक्सेप्ट करना है। अपने सब्जी तो बना देना, अभी वो कोथमीर नहीं डालेंगे आज, क्या है अभी टाइम नहीं है वो काटने के लिए, नहीं नहीं वो भी काटना है, वो भी बारीक ही काटना है, उसकी डंडियां निकाल देना है, पत्तों को भी बारीक करना है और वो अच्छी तरह से फैलाना है उसके ऊपर। छोटी छोटी बातों में भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी आपकी सेवा नहीं है, वो भगवान की सेवा है। और अगर भगवान की सेवा में मालाओं को ध्यान से बनाना है, हाँ एक फूल में एक पंखुड़ी काली हो गई है, पुरानी हो गई है, वो फूल को डिस्कार्ड करना है, दूसरे फूल को लगाना है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में इतना सूक्ष्म ध्यान देते हैं तो भगवान हमारी आध्यात्मिक उन्नति पर सूक्ष्म ध्यान देते हैं। बहुत समझना जरूरी है, भगवान की सेवा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चल जाता है। हमारा भारत में कैसा है, चलता है, उसमें क्या है, ट्रेन में भी जाओ विदाउट टिकट चलता है, कैंप में आ जाओ ऐसे ही मैं आ गया अभी दो दिन सेवा करूं क्या, नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है वो। तो ये सारी सेवाएं जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं कैंप में, उसमें भी अरे चलता है, तो नहीं लिखा तो क्या हुआ, उधर सर्कल नहीं किया उसका, राइट आई में ये प्रॉब्लम है करके नहीं लिखना है, वो पूरा घुमा के। वो जो कला है ना वो हमारे सुखाव माता जी में है। हम लोग सब लोग प्रामाणिक सेवक, ऐसा नहीं कि आप प्रामाणिक सेवक नहीं हो, लेकिन जब आपके द्वारा सारी सेवा करके पेपर भर के उनके पास पहुंचता है तो 10 कमियां निकालती है उसके अंदर वो, और फिर सर्कल करती है, टिक करती है, उसका डेट चेंज करती है, उसका बीपी सब कुछ देख के फाइनल करके डेट देती है। वो डेट डबल नहीं होना चाहिए, वो भी देखती है कि उस दिन किसी और को डेट तो नहीं दिया है, उस डेट में कोई उत्सव तो नहीं, यहाँ पर होली तो नहीं है, उस डेट पर इतवार तो नहीं आता है, वो डेट ये फेस्टिवल में तो नहीं आता है, वो डेट उनके 3 दिन के बाद में होना चाहिए या दूसरा 10 दिन के बाद में होना चाहिए, वो सारा कैलकुलेट करके पूरा साल का कैलेंडर बनाया उन्होंने। जब मैं उस दिन प्रार्थना करने गया था 2019 का कैलेंडर पूरा होने को आ रहा था उनका, दिसंबर तक का, अभी तुम लोग 2019 में शुरुआत कर रहे हो। ये सेवा है, सेवा है केवल करना और सेवा के गहराई में जाकर सूक्ष्म रूप में उसका माइन्यूट डिटेल्स देखना। जैसे आप अभी ये फैला दिया समझो, उसका कोना ऐसा देखो फोल्ड हो गया है ना, उसको भी ठीक करना, करो ठीक है ना, बता रहा हूं आपको मैं एग्जाम्पल देके कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तिलक लगा रहे हैं भगवान के आनंद के लिए, तो एक जाड़ा और एक पतला है, नहीं उसको नाखून से फिर ठीक करना है, स्ट्रेट करना है उसको, हाँ यहाँ पर पॉइंट नहीं चलेगा, नहीं पॉइंट करना है ठीक से, हाँ क्योंकि वो देखेंगे हमको ना, हम आ रहे हैं तो वो देखेंगे हमको, भक्त लोग भी देखेंगे, सबको आनंद आना चाहिए। तो हर एक सेवा में आप अनंत मात्रा में और अधिक बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट कर सकते हैं उसमें। हमारे ना एक गुरु भाई थे, उनका नाम था अभिराम गोपाल ठाकुर, वो पाकिस्तान से थे, फिर तो भाग के आए, 8 मंदिर जला दिए वहाँ पर, तो भाग के आए वो वृंदावन में रहे हमारे पास, फिर उसके बाद में गोपीनाथ मंदिर में रहे, फिर वो उनकी पत्नी तुलसी देवी की, मैं कल बहुत याद आ रही थी उनकी पत्नी की मुझे, पाकिस्तान में जब हमला हुआ ना तो भाग रहे थे लोग और छुप छुप के रह रहे थे, तो तो ये माता जी की तुलसी भी बहुत श्रद्धा थी, तुलसी की बहुत भक्ति है और पूजा करती थी वो, कई गमले तुलसी के सजा के रखे थे उन्होंने। तो उतने में ना ये प्रभु जी तो अकेले निकल गए थे, बाद में वो निकलने वाली थी, तो रात को तूफान आया बहुत, तो तूफान में वो शरीर समाप्त हो गया उनका। लेकिन जब उनका शरीर समाप्त हुआ तो वो तुलसी का पौधा ऐसे गले में लगाकर शरीर छोड़ दिया उसने, उसके गोद में तुलसी का पौधा था जब वो गुजर गई थी। तो प्रभु जी फिर अकेले हो गए, थोड़ा वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने, वो गोपीनाथ मंदिर में आ गए। तो गोपीनाथ मंदिर में वो महाराज के कुक बने, बड़े अधिकारी थे पाकिस्तान में, बहुत अमीर, ब्रह्मचारी बनकर वानप्रस्थ आए और महाराज जी का भोजन बनाना शुरू किया। महाराज जी के लिए बहुत लोग भोजन बनाते थे, समझो आपने दो सब्जी बनाई, आपने दो सब्जी बनाई, आपने रोटी बनाई, आपने चावल बनाए, ऐसे मिलके महाराज की भोजन बनता था। तो महाराज के पास जब थाली पहुंचती थी तो महाराज बताते थे कि ये आइटम अभिराम गोपाल ने बनाए हैं, बिना देखे, बिना मिले उनको, प्लेट देखकर बताते थे। तो हमने कहा महाराज आपको कैसे पता चलता है? उन्होंने कहा उनके आइटम है ना, उसमें से तेज निकलता है, उन आइटम से तेज निकलता है। तो फिर भक्तों भी उनको मिले तो क्या देखते हैं कि उनकी सब्जी है ना, समझो आप अभी कद्दू की सब्जी बना रहे हैं, तो सारे कद्दू के पीस एक साइज के, और जो कम कम साइज के बनते हैं उसको निकाल लेते थे, और जितने भी पीस काटे हुए हैं ना वो सारे एक ही साइज के रहते। कोई भी सब्जी बनाओ, दूधी की बनाओ, भोपले की बनाओ, भिंडी की बनाओ, सारे भिंडी एक साइज के, छोटी बड़ी नहीं आएगी उसके अंदर, पहले छांट लेंगे वो, काट काट के बराबर रखेंगे और उसी की सब्जी बनाएंगे महाराज के लिए। क्योंकि वो दिल में चिंतन क्या है उनका, गुरु महाराज के लिए बना रहे हैं, ये बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। हमारी तरफ से जो भी कुछ है, हमारे पास दुनिया में कुछ बेस्ट चीजें नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी बेस्ट है उसमें से बेस्ट बनाना चाहिए। ये चिंतन है, ये केवल बाह्य वस्तु नहीं है कि हाँ चौकोन काट के रखा है, बहुत माप देखो कितना सेंटीमीटर है, वो नहीं है। वो उनका चिंतन जो है ना वो सूक्ष्म है, और चिंतन क्या है कि मुझे गुरु को प्रसन्न करना है, उनको आनंद देना है। गुरु महाराज भी वैसे ही दिव्य व्यक्ति हैं, उनको भी ये दिव्यता तुरंत समझ में आती है, इसका भाव क्या है। अरे हमको भी समझ में आता है, ये घर का बना हुआ है खिचड़ी सिंपल, और ये बाहर का पनीर मटर आया है काजू का पेस्ट बनाकर, आपको समझ में आएगा कि बाहर का ये घर का है। क्योंकि घर वाले के अंदर प्रेम होता है और प्रेम का स्पर्श इधर होता है, और बाहर की जो काजू पेस्ट का टेस्ट इधर होता है जबान पे, दिल को छूता है वो, बराबर पता चलता है कि ये ना घर से आया हुआ है। यही है सब भक्ति में, और क्या है सूक्ष्म दृष्टि और परिपूर्णता का प्रयास। परिपूर्ण होने का हम लोग ऐसा ये नहीं कर रहे कि हम परिपूर्ण है, देखो कितना प्लानिंग किया हमने, वो सब तो ठीक है हमारा प्रयास, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है वो प्रयास है कि हमको हमारी सेवा में और अच्छा करने के लिए परिपूर्णता करनी है। आप बोलेंगे हाँ बरसाने में तो बहुत स्वभाव इधर करेंगे, नहीं भक्ति विधान में जाएंगे वापस तो भी उधर वही करना है, क्योंकि वो राधा रानी की सेवा है। वो मंदिर में जाएंगे तो भी राधा रानी की सेवा है, केवल ये धाम तक 10 दिन के लिए रखना नहीं है। भक्ति विधान में तो वापस वैसे रिलैक्स हो गए, टाइम पास कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर आकर वो जो सूक्ष्म चिंतन का भाव है उसको स्वीकार करने के लिए आए हैं, बटोरने के लिए आए हैं। फिर लौट के जाएंगे तो हमारे जो जो सेवा है, परिवार की, घर की सेवा है, पति पत्नी की सेवा है, बच्चों की सेवा है, वो सारे में कैसे हम लोग बेस्ट और करें, और कैसे बेस्ट करें, कैसे दिल से करें, कैसे सूक्ष्मता से करें, प्रसन्न करने के लिए करें, इसका चिंतन होना चाहिए। वो चिंतन ही भक्ति है, और उस चिंतन की वजह से फिर दिखेगा आपको सब्जी कटी हुई सेम सेम ठीक से लगी हुई, हाँ ऐसा ऊपर से बह रहा है ऐसा नहीं, डालेंगे भी उतना इतना ही इतना सुंदर दिखे, हर तरह की सुविधा देखेंगे। जैसे हम परोस रहे हैं इसमें, अभी कोई इसमें से बहुत सारे लोग खाना परोसते हैं, डाल देते हैं ऐसे, उसमें चटनी में ही पोहा डाल देते हैं, और वो पोहा के अंदर ऊपर से बटाटे वटे में पोहा गिर जाता है, हाँ वैसा नहीं होना चाहिए। आप जब सर्विस कर रहे हैं तो भी आपको देखना चाहिए कि ये आइटम अलग होना चाहिए, उसके बाद में ये अलग होना चाहिए, उसके बाद में अलग होना चाहिए, प्रेम से देना है। आ गए फुकट खाने के लिए तो दिया था ना, तीसरा मांगने को आ गए, ये भाव नहीं होना चाहिए। कौन है हम, हमारे थोड़ी मालकी का सब चीजें, ठाकुर के सेवक हैं हम, आने वाले भी सेवक हैं, उनका आदरपूर्वक देना है, प्रेम से देना है, सम्मान से देना है, तब जाकर सामने वाले को आनंद आएगा। अगर आपके चेहरे पे ऐसा भाव होगा ना, आ गया तीसरा लेने के लिए, उसे भी खुशी नहीं मिलेगी खाने के, उसको भी दुख होगा, बहुत बढ़िया बटाटा वड़ा है, किसी ने प्रेम से बनाया है, आप दे रहे दुख से उसको। हर चीज अपने व्यवहार से दूसरों को पहुंचती है। अगर मैं आपको दे रहा हूं ऐसे कंजूसी से, नहीं आप बोले और दो, तो थोड़ा सा दे रहा हूं, और थोड़ा दो ना, और थोड़ा सा दे रहा हूं, तो हमारी कंजूसी जो है ना, उस हलवे के साथ आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। मैं केवल हलवा नहीं दे रहा हूं, कंजूसी भी दे रहा हूं। मैं अगर प्रेम दे रहा हूं तो प्रेम भी आपके हृदय प्रवेश करेगा, और मैं बहुत उदार हृदय से दे रहा हूं तो उदारता भी आपको दे रहा हूं मैं हलवे के साथ, केवल हलवा नहीं दे रहा हूं। ये सबको ध्यान रखना है। और आपकी सेवा भी ऐसी ही है। अगर आप देख रहे हैं कि चलो प्रभु जी आए थे राउंड लेने के, तब सब लोग कैंप में काम कर रहे हैं, तो चले गए तो बैठ गए मोबाइल पे बात करें, व्हाट्सएप में खेल रहे हैं, तो राधा रानी भी देख रही है कि मेरी सेवा कैसे की जा रही है। उसी प्रकार का परिणाम मिलेगा आपको। कितना भी कष्टमय सेवा हो, मुश्किल सेवा हो, कैसे कर रहे हो आप वही देख रहे हो। उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, वो केवल हमारी आपकी सेवा के भाव को देख रहे हैं, किस भाव से, किस प्रेम से, किस दिल लगाकर कर रहे हैं। कोई भी सेवा हो, हाँ, बालक की हो, माँ की हो, बहू की हो, सासू की हो, घर की हो, कैंप की हो, जॉब की हो, सेवा कैसे कर रहे हो उस पर भगवान देखते हैं। बाकी दुनिया के अफसर लोग आपका सेवा का रिकॉर्ड देखते हैं, और भगवान उस सेवा की क्वालिटी देखते हैं। तो वो जो सेवा की क्वालिटी है उसका परिपूर्णता विशाखा देवी है। अकेले विशाखा देवी नहीं, सब लोग ऐसे ही दिल से सेवा करते हैं, भाव से सेवा करते हैं। उनका पूंजी जो है ना वो भाव है, इसलिए वो भाव की वजह से उनका ध्यान, वो जैसे हमारे मंदिर में माला बनती है ना, तो भाव एकदम गहराई में, वो सब वो गुलाब की पंखुड़ी को दो फोल्ड करते हैं और पिन डालते हैं, फिर दो फोल्ड करते हैं फिर पिन डालते हैं, और सेम सेम दिखना चाहिए। आप नर्तक के मध्य जो देखिए कैसी मालाओं की योजना करती है वो, और इन लोगों से बनवा लेती है बराबर से, देखो आप कैसा डिजाइन बनाते हैं उसका, कितना चिंतन है उसके अंदर, उसकी साइज, उसका आकार, उसका रंग, उसका कॉम्बिनेशन, हाँ, कितना मग्न होकर आपको सीखना चाहिए। वो पर्दा बनाया ना, पर्दा मैं देख रहा था, उसने पर्दा लगा रही थी, इतना फर्स्ट क्लास बनाया है पर्दा, वो कि इतने छोटे छोटे हुक्स बनाए हैं, बराबर जगह पर लगते हैं, वो प्लेन दिखाई पड़ता है पर्दा, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, बीच में एक टक लगा दिया है। हाँ, घर शाम को देखता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कितना बढ़िया से उसको निकाल रहे हैं, फोल्ड करके रख रहे हैं, शुभ्र सफ़ेद, उनके चरित्र जैसा वो पर्दा है। उनका चरित्र कैसा है? स्वच्छ, चमकदार, सफ़ेद, सात्विक, वो उनका चरित्र है, उसका प्रमाण है उसका वो पर्दा, और उनकी सेवा, उनकी सेवा उनके हृदय का प्रकट्य है, दिख रहा है उनका हृदय में क्या है, वो बाहर सेवा में दिख रहा है कि ये इनका हृदय है। बहुत कम समय मिलेगा, अभी ज़्यादा समय बुढ़ापे में आ गए माता जी, सब लोग देख लो, इनका संग बहुत कम है अभी मिलेगा, प्रभुपाद के डिसाइपल जा रहे हैं एक एक करके। तो ये सेवा भाव जो है ना, वो एक सुखाव माता जी, देखो वहीं बैठ कर रोटी चबाते रहते हैं, वहीं पर काम करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, कोई पूछता नहीं उनको, माता जी ये जल्दी को चले गए, अरे वो उधर ही बैठी रहती दिन रात, सबके पहले आती है, सबके एंड में जाती है, साल भर का इंतजाम करके जाती है सबको, बोलते कोई ट्रेनिंग लेने को तैयार नहीं है, बोलते पूरा ग्रुप में ये मेरा काम करने के लिए। तो चिंता नहीं है उनका, ये प्रभुपाद जी ने उनको वो ट्रेनिंग दिया था, एक ट्रेनिंग दिया था निस्वार्थ सेवा करने का। कोई भी सेवा में उसको अपेक्षा नहीं कि ये सेवा करके मुझे प्रमोशन मिलेगा, वो कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कृपा मिलेगी, लड्डू मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिन, मुझे नर्तकी माता जी ने बताया भी है कई बार कि हमें किसी भी सेवा का लाभ या कुछ रुपया या कुछ क्या कहते हैं मुबदला कभी देने का ट्रेनिंग लिया ही नहीं था हम लोग ने। जो भी सेवा करना है ऐसे फ्री में ही करना है, यही उनका भाव था। लाभ के लिए सेवा करने का कुछ काम ही नहीं है, प्रभुपाद के लिए करना है। उम्र के 27 साल में उनको पति छोड़ के भाग गए, एक कन्या को गोद में छोड़कर। आज उनकी उम्र 70 साल है, 70 साल तक, अभी 27 साल से 70 साल तक साध्वी का जीवन बिताया उन्होंने, प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। तो अब तक तो 4 विवाह हो चुके थे, अगर कोई जर्मन की औरत होती या इंग्लैंड की औरत होती। 27 साल से लेकर बच्ची को बड़ा किया और अकेली रही, एक साधु की तरह, साध्वी की तरह प्रभुपाद की सेवा में। इतना स्वच्छ चरित्र है उनका, इतना उच्च चरित्र है, हमारे लिए कितनी प्रेरणा है। ऐसे भक्त पे भी जा रहे हैं एक एक करके, फिर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए सेवा में परिपूर्णता होनी चाहिए। आज नहीं हो चलेगा, परिपूर्णता होने की इच्छा होनी चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करना है हमको, चल जाता है चलेगा 99% नहीं, 100% ही देना है, अपना बेस्ट देना है हमारा। कल हम और अच्छे हो जाएंगे तो और हमारा बेस्ट कल देंगे हम, लेकिन बेस्ट ही देना है हमको। कथा भी करनी है तो छोटे छोटे पॉइंट निकाल कर उसमें से बेस्ट बेस्ट जिस तू बता सकते हैं वो बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कौन है आए नए नए लोग तो खुद आधा घंटा बिता दो, भेज दो उनको दूसरी जगह ले जाओ, थोड़ा बता दो उधर, ऐसा नहीं। जिस जगह पर जो सार है उसका गहराई में जाकर छूकर उसको लोगों को देना है। प्रयास कभी भी समाप्त नहीं होता है। अरे अभी हम बेस्ट हो गए, अभी बेस्ट क्या हो गए, अभी तो बेस्ट में से बेस्ट आगे है अभी। और गौलोक में भी राधा रानी भी हमेशा प्रयास करती रहती है, और कैसे मैं सुंदर काम करूं, और सुंदर सेवा कैसे करूं। ललिता देवी, विशाखा देवी, वृंदा देवी और आगे प्रयास करते कि और लीला सुंदर हो जाए, इसका आयोजन मैं कर रही हूं। तो विशाखा देवी का यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसके द्वारा वो हमें प्रेरणा दे रही है। सखियों का गांव है, सखियों का गांव है, सखियों का भाव से भरा हुआ है, यहाँ के लोग भी उसी भाव को अपनाते हैं, वही सादगी, वही प्रेम, वही समर्पण, वही सेवा भाव। तो यहाँ पर एक सुंदर लीला हुई है। कितने बजे अभी? ओह माय गॉड, ऐसा ही होता है। तो एक बार वृंदा देवी के आयोजन में यहाँ पर मिलने का तय होता है, इस वन में, इसका नाम अंजन वन नहीं था, जो भी था यहाँ मिलने का तय होता है। सब कुछ आयोजन है, श्रृंगार हो रहा है, कृष्ण का हो गया, राधा रानी का हो रहा है। कृष्ण अपने सखाओं को लेकर आ जाते हैं, बाजू में जो कुंड है उसका नाम किशोरी कुंड है, वहाँ पर राधा कृष्ण विराजते थे, कुंड के किनारे बैठते थे, लीला करते थे, बोट चलाते थे, पक्षी आते थे, तो उस किनारे पे वो आ गए श्रृंगार करके, और राधा रानी नहीं आई, देर हो गई उनको, श्रृंगार चल रहा है अभी भी। तो उसने में कृष्ण व्याकुल हो गए कि मैं आ गया, तो मिलने के लिए व्याकुल हो, व्याकुलता है ना उनको। तो उन्होंने मुरली दिखा ली और कौन से स्वर में धुन बजाई, आठवें स्वर में धुन बजाई। सब लोग एक्सपर्ट हो गए एकदम, परफेक्ट एकदम, सब नंबर वंबर याद है आपको, खाली धुन बजाना बाकी है, धुन सुनना बाकी, बस इतना ही, बाकी सब रेडी है। तो आठवीं धुन बजाई, राधा रानी को वहां सुनाई पड़ी, श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार हो रहा है उनका। तो तब तक तो आराम से चल रहा था, बहुत ध्यान से देख रही है। जब मुरली बजी तो व्याकुल हो गई, अरे वो पहुंच गए वहां पर, मैं क्या कर रही हूँ, अरे सखियो क्या कर रही हो, कितना बाकी है श्रृंगार, जल्दी जल्दी करो। तो वो भी जल्दी जल्दी करने लगे। अभी वो फिर वो क्या, अभी कृष्ण कैसे ना, आपने एक रिंग दिया नहीं उठाया तो छोड़ नहीं देंगे, वो बार बार रिंग देंगे आपको। जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक रिंग देते रहेंगे, जब तक आप नहीं आ रहे हो तब तक वो आठवीं धुन बज रही है। तो आप यू कैन जस्ट सिट क्वाइटली, नो, कितना भी आदमी ऐसा वो पसंद वाला नहीं हो समझो, और वो फोन कर रहा है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, छठवीं बार कम से कम हलो तो करेंगे आप, बोले बिजी हूँ बाद में करता हूँ, लेकिन वो आपको उठाने के लिए मजबूर करेगा उसके सातत्य से, लगातार करने से। तो ये भी वहां पर कभी क्या खाली खड़े ना, लीला तो नहीं हो रही है अभी, फ्री है तो वही चल रहा है उनका। तो और व्याकुल होते जाते, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो आखिर में ऐसी अभी धुन में कैसा होता ना, स्लो बजती है पहले, फास्ट बजती है, फिर तीव्र बजती है, और उसका तो उसका एक होता है ना परिणाम। तो फिर वो क्या होता है, एक बार बोलते बस हो गया अभी, और मत करो मैं जा रही हूँ अभी, तो वो भागने लगती है वहां से, सीधा उठती है और भागने लगती। जो भी है उसको पता नहीं क्या बाकी है अभी, लेकिन जो भी है वो अभी रुक नहीं सकती है, बहुत हो गया तुम्हारा टाइम, समय बीत रहा है, तो वहां से भागती है वो। अभी क्या स्थिति है उनकी, लेट हो गया है और मुझे जल्दी पहुंचना है, और जितनी भी जल्दी जाऊंगी वो लेट ही होगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है ना। अभी अभी मैं 15 मिनट लेट निकली हूं, तो मैं जब पहुंचूंगी तो फिर 25 मिनट लेट हो जाएंगे पहुंचते में, या तो 27 मिनट लेट हो जाएंगे, या तो 20 मिनट हो जाएंगे, तो लेट तो है ही ना। तो भी अभी मैं अभी स्लो चलूंगी, लेट तो होएगा ना, भारत में कैसा रहता है, हम ऑलरेडी लेट, तो क्या फर्क पड़ता है, और थोड़ा दे सही, इसमें क्या है, सब चल जाता है यहाँ पर, वैसा नहीं होता है गोलोक धाम में भगवान की लीला में। तो भाग रही है वो, अभी वो जो भाव है ना, लेट हो गया है और जल्दी पहुंचना है, उसको कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव, वो विशिष्ट भाव है। और जब ये पैदा होता है ना लेट होने से, देर होने से, तो वो भाव को हैंडल करने में ललिता देवी बहुत कुशल है। उस स्थिति में कैसे मैनेज करना है, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो क्या काउंसलिंग करना है, परामर्श क्या देना है, कैसे बात करनी है, कैसे शांत करना है लोगों को, कैसे, जैसे कि एग्जाम में भी, आज एग्जाम है मैथ्स की, कठिन सबसे पेपर है, और ऑलरेडी परेशानी से मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, और अभी मैं ऊपर से लेट भी हो रहा हूँ, तो मम्मी बोल रही है नाश्ता तो कर लो, तो बोले वो टैक्सी में ऐसा पेपर पढ़ रहा है, मम्मी उसको खिला रही है, वो खा रहा है, हाँ बस 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 और एक मत दो, बस हो गया, ऐसे समझ समझे आप, मम्मी को खाना भी खिलाना है, ब्रेकफास्ट देना है, तो 3 घंटे पेपर कैसे लिखेगा वो, कहाँ से ग्लूकोज मिलेगा ब्रेन में उसके, तो फिर वो कुछ खिला भी रही है उसको हाथ में, कुछ फ्रैंकी वैंकी ऐसी ड्राई आइटम और वो ऐसे उधर ही पढ़ रहा है, वो ऐसे मुँह के सामने ऐसे ला के हाँ खा रहा है उसको, फिर वो आता सेंटर, तो फिर वो टैक्सी से उतर जाता है, तो उस मम्मी भी डब्बा बन करके भाग रही है, वो भाग रहा है उसके पीछे पीछे, किताब लेकर भाग रहा है, और सेंटर में ऐसे घंटी बज रही है वार्निंग बेल, और चुप पहुंच जाता है, तो मम्मी बस ये तो एक आखिरी तो खा लो, नहीं 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 अभी हो गया टाइम ये जो है ना मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं, और ललिता देवी उसको संभाल संभाल के लेके आती है यहाँ तक। जैसे जल्दी में गिर गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, और लेट हो जाएगा, तो भी संभालना है, तो फिर यहाँ पहुँचती है कैसे भी करके, 15 मिनट हो गए, 27 मिनट भी हो गए, पहुँच जाती है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर ऐसे ही खड़े ना, फिर नीचे करते हैं, आ गए अभी फिर उसके बाद में कृष्ण उसको देखकर हंस पड़ते हैं, दर्शन किया हंस पड़ते हैं। तो बोले क्यों हंसे, इतनी भाग भाग के आ रही हूँ, देखो मैं इतना इनको डांटा उसके लिए, और आ गई तुम हंस रहे हो, बोले क्या करूँ नहीं, तो इतना सुंदर श्रृंगार किया है, अरे काजल ही नहीं लगाया तुमने, अभी मैं देख रहा हूँ, तुम थोड़े आईने लेके ऐसे भाग भाग के आईना देख के देख के आ रही हो, मैं तुम्हारा आईना हूँ, मेरी आंखों में देख रहा हूँ, मेरे आंखों से काजल ही नहीं लगाया है, अरे तुम सखी हो पागल सखी हो, क्या क्या तुमको दिखता नहीं, सामने से मेकअप कर रही हो, दिखता नहीं काजल लगाया नहीं, आपने तो बोला ना बंद करो भाई, हम लोग भाग गए तो क्या करें, आपने तो मना किया, इसलिए हमने रोक लिया, हम लोग काजल लगाने वाले थे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम वापस जाते हैं, अभी काजल लगा गया थे, तो गए क्या वापस वो, हरे कृष्ण थोड़े छोड़ेंगे उसको, अरे पहले इतनी बार मुरली बजाई, इतनी बार बेल दिया तुमको, उसके बाद में आई हो तुम, और फिर अभी दोबारा बजाने पड़ेगी, जाओगे तो पता नहीं कितनी देर से आओगे, शाम ढल जाएगी पूरी, इधर हमारा लीला का मुहूर्त भी ढल जाएगा, कहाँ गए रामचरित जी, बैटरी खत्म हो गई उसमें से। तो इस तरह से कृष्ण कहते कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, मैं आपको श्रृंगार पूरा करता हूं। तो ऐसी शिला पर हाथ घुमाया, काजल पैदा हो गया, काजल पैदा हो गया, तो राधा रानी की आंखों का श्रृंगार कृष्ण ने अपने हाथ से किया। इधर की बैटरी खत्म हो गई, वहां पर क्या कर रहे हो, फिर मुझे बाद में पूछते रहते वो कथा में क्या बोला था आपने, क्यों वो कथा में कहीं और कुछ करते रहते हैं, लकड़ी तोड़ रहे, सब्जी काट रही, कोई बात नहीं हमारा अच्छी। तो राधा रानी के लिए एक पत्थर पे हाथ घिसकर काजल निर्माण करते हैं, और अपने सुंदर सुकोमल हाथों से उंगलियों से उनका आंखों का श्रृंगार करते हैं, और फिर कहते हैं कि अभी श्रृंगार आपका पूरा हो गया, फिर वो यहां को आगे की लीला करते हैं। क्या सीखते हैं हम लोग इसमें से, लीला यहां समाप्त होती है कि भगवान ने यहां पर राधा रानी का श्रृंगार पूरा कर दिया। जैसे हम हैं, हम भी बहुत सारा काम करते हैं सेवा में, हमारी इच्छा भी अच्छी है, प्रामाणिक है, सिंसियर है, हम कामचोर नहीं है और अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी हमारी सेवा में त्रुटि रह जाती है। जैसे वो त्रुटि सुखावा माता जी ढूंढती है कि भाई तुमने इसको सर्कल नहीं किया, आपने जानबूझ के नहीं किया, हो गया नज़रअंदाज, लेकिन वो देखती है कि हाँ इसमें ये कमी है, उसको पूरा कर देती है, पूरा करके फाइल रख देती है, फिर उसमें पूरा किए बिना फाइल रखती नहीं है। तो वैसे ही हमारी सेवा में बहुत सारी त्रुटियां फिर भी हो सकती है। नंबर वन, हमारे जो पता नहीं हमको समझ में नहीं आया वो त्रुटियां जब दूसरा बताता है तो उसको स्वीकार करने में नम्रता से तैयार रहना चाहिए। क्या इतना केवा किया फिर भी आके तुम इतना इतना सब, देखो माइक्रोफोन लगाया, कैमरा लगाया, इतना सामान लेके यहाँ लगाया, फिर भी प्रभु जी डांट रहे हैं भाई बैटरी नहीं है, उधर देखते हो क्या करते हो, हाँ है ना। ये एक हो सकता है ना कि इतना मैंने किया, देखो अकेले सब भागता हूँ, कोई आदमी आते भी नहीं हेल्प करने के लिए, अकेला उठाता हूँ, देख के आता हूँ, लगाता हूँ, इधर करो उधर करो सब करता हूँ, और फिर जरा सी बैटरी खत्म हो गई तो चिल्लाते रहते हैं। एक भाव है। दूसरा यह है कि हाँ यस यस ये रहेगा कमी, मेरा ध्यान नहीं दिया मैंने उसके ऊपर, नम्रता से उसको स्वीकार करना। और जब ऐसी भावना होती ना तो हमारे सेवा में जो भी त्रुटियां होती है भगवान उसको पूरा करके स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं वहां पर फाइल पूरा? सुखा माता जी आपकी त्रुटियां अपने हाथ से पूरा करकर उसको सेवा में रुजू कर देती है, ताकि अगला आदमी जब वो फाइल खोलेगा तो उसको पूरा रिजल्ट मिलेगा। वो ये चिल्लाते नहीं रहेगा कौन पता नहीं, अब उल्लू आदमी था उसमें कुछ पता ही नहीं, लाइट है कि लेफ्ट आई है कि बीपी का बीपी चेकअप ही नहीं किया है, कुछ मेंशन ही नहीं किया है, पता नहीं कोई उल्लू का पट्टा बैठा होगा वहां पर, ऐसा नहीं है। वो जो भी उल्लू का पट्टा है उसका ठीक करके ही आपको भेजा है आगे। तो जैसे वो करेक्ट कर रही है आपकी त्रुटियों को, वैसे भगवान भी अगर आप प्रामाणिक रहेंगे तो आपकी सेवा में जो भी कमियां रहेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सेवा को पूरा कर देते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम योजनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनन्य भक्ति करता है वो प्रामाणिक है, सिंसियर है, समर्पित है, उसके पास भी कमियां हो सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की कमियां मैं पूरी करता हूं, और ऐसे भक्तों के पास जो है उसको मैं संभाल के रखता हूं। योग क्षेम, योग का मतलब है दे देता हूं जो नहीं है वो, क्षेम यानी जो है वो संभालता हूं, मेंटेन करता हूं उसको। और क्या कहते हैं, वहामी अहम, ये नहीं कि मेरे इंद्र से करवाता हूं या ब्रह्मा से करवाता हूं, खुद करता हूं मैं, वहाम्य अहम खुद करता हूं। भगवान इसका प्रमाण भी दिया है। वो कह सकते थे अरे इंद्र एक सारथी भेज दो अर्जुन को, वो जरूरत है उसको अच्छे ट्रेंड सारथी की, वो बड़े युद्ध में जा रहा है वो, तो इंद्र तुरंत भेजता, मातली को भेजता, मातली जाओ भगवान का आदेश है इंद्र के अपने अर्जुन के सारथी बनो। लेकिन भगवान ने किसी को फोन नहीं किया, खुद बने सारथी। ये हमारे भगवान है, हर चीज व्यक्तिगत रूप में करते हैं, पर्सनली करते हैं हर चीज। जैसे हम लोग शादी में न्योता देते ना तो हमारे प्रेमीजनों को खुद जाकर आमंत्रण देते हैं, पांव छूकर नारियल देते हैं, बाकी लोगों को फिर व्हाट्सएप और ये फोन और हरी बोल यही मेरा पर्सनल समझना ऐसा भेज देते हैं, लेकिन जो अपने हैं उनको जाकर पैर छूकर सुपारी देकर पान देकर नारियल देकर उनको विनती करते हैं आइए। तो ये व्यक्तिगत रूप है भगवान की भक्ति, हाँ कलेक्टिव नहीं है कि भाई हाँ सब लोग मिलकर कर रहे हैं वो मेरी कमी वो पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो मैं मेरी सेवा पूरी करूंगा फिर भगवान अपने आप को बचा हुआ काम कर देंगे। वो मतलब भगवान भी कोई सेवा आपकी प्रामाणिकता से की गई हो, अनन्य चिंता मतलब अनन्य भाव से की गई हो तो वो उसको अपरिपूर्ण है, त्रुटि वाली है, उसको फेंकने देंगे उसको, वो देखेंगे कि कैसे भाव से किया। अनन्य चिंतयंतो माम, ये भाव से की गई है, लेंगे उसको ठीक करेंगे और स्वीकार करेंगे उसको। ये हमको यहाँ पर सीखना है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर गांव है, कोई यहाँ पर लालच लोभ नहीं है, बस सिंपल लोग हैं यहाँ पर। ऐसे धुंध में हमने यहाँ पर एक बार कैंप किया था यात्रा में, तो बाहर बैठे थे उस समय, और कथा में कौन बैठे है वो भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, बोलो इतनी धुंध थी, सब लोग बैठे हुए हैं लिटरली, प्रभु जी भी थे उसके अंदर, याद नहीं आ रहा उनको, पूरा धुंध इतना था उसमें, वो धुंध में गोपियां पानी भर रही थी यहाँ से इसी बाजू से वो जा रही थी उसमें से बीच में से, इतनी ठंड में ठंडा पानी मटके में लेकर भर के जा रही, उसमें हमने कथा की थी इधर। फिर 6:30 को आए थे, आज भी अगर आते 6:30 को तो वैसा ही होता यहाँ पर, इसलिए हम लोग 7:45 को निकले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।